हो जाती है और इसी तरह जो है वो जख्म जहां पे आता है वहां पे एंटीबायोटिक ली भी तो भी जब पट्टी खोली तो लगा कि जी बोटी निकली हुई है सारी। तो इस तरह की ये जो है ये खतरनाक किस्म का बैक्टीरिया और ये इन्फेक्शन है जो फैलता जा रहा है और उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि उसमें फिर प्रॉपर कॉन्स्टेंट ट्रीटमेंट जो है लोगों को चाहिए है। तो ये वो कह रहे हैं जी सावधान रहे यानी कि आप क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो सिम्टम्स हैं इसके स्ट्रेप ए इन्फेक्शन के ये सिर्फ स्ट्रेप ए इन्फेक्शन गले से रिलेटेड नहीं है ये अगर इसको आपने ना देखा तो ये फैल भी सकता है आपके जिस्म के दूसरे हिस्सों में। तो इसको देखें।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
जी कल हमने जनाब आपको क्या खबर सुनाई थी कि माइक्रोसॉफ्ट जो है जनाब उसने दिखाया है $3 trillion का जो है वो कंपनी बन गई है यानी सेकंड कंपनी आफ्टर एप्पल। आज की खबर है अकॉर्डिंग टू वर्ज मैगजीन माइक्रोसॉफ्ट जो है 1900 एम्प्लॉइज निकाल रहा है। पायन व्हाट इज दिस मजाक व्हाट इज दिस
सारे मिलियनेयर बन गए होंगे तो उन्होंने कहा दूसरों को चांस दो।
हाँ दूसरों को चांस दो है। अच्छा जी उन्होंने कहा जी कि ये जो हमने असल में एक्वायर किए थे जस्ट फ्यू मंथ्स बैक ये जो गेमिंग कंपनी थी एक्टिविजन ब्लिज़र्ड और इसके अलावा जो है जेनी मैक्स और ये जो इनकी डिवीजन है एक्स बॉक्स इसके अंदर जो है इन्होंने अब निकाले हैं बहुत सारे लोग जो कि बनाते हैं 8% ऑफ माइक्रोसॉफ्ट टोटल गेमिंग वर्कफोर्स ऑफ 22,000 अकॉर्डिंग टू ये जो इनका इनके गेमिंग सीईओ है फिल स्पेंसर उन्होंने कहा जी कि हम जो है अपनी स्ट्रेटेजी को ठीक करना चाहते हैं अपनी कॉस्ट जो है उसको सस्टेनेबल करना चाहते हैं इसलिए हमको ये बंदे निकालना पड़ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट की जो गेमिंग शेप ये जो इन्होंने शेकअप किया है उसकी वजह से जो ब्लिज़र्ड के प्रेसिडेंट हैं माइक ये बैरा उन्होंने आज कहा जी कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मैं रिजाइन कर रहा हूं मैं नहीं आपके साथ और काम कर सकता। मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर तुम कमा रहे हो और लोगों को कट रहे हो व्हाट इज दिस मजाक
1900 एम्प्लॉइज
हाँ एक भी नहीं दो भी नहीं 1900 एम्प्लॉइज मीन्स 1900 फैमिलीज माजिद भाई इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन सारे लोगों के ऊपर फिर अफेक्ट आता है ना
चेन रिएक्शन होगा फिर बताओ।
हाँ जी बिल्कुल ऐसे। अल जजीरा की जनाब ये रिपोर्ट है और इसके मुताबिक जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं तैयब अर्दोगान साहब उन्होंने अपने इरानियन जो काउंटर पार्ट हैं प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी उनके साथ मुलाकात की है क्योंकि आज वो अंकरा में विजिट के लिए आए हुए हैं अर्दोगान साहब से। इसमें दोनों लीडर्स ने आज फिर से बड़ी समझदारी की बात की और उन्होंने कहा जी कि हमको मिडल ईस्ट के अंदर ज्यादा चीजें भड़काने की जरूरत नहीं है और इसराइल का जो इनह्यूमन अटैक्स गाजा पे चल रहे हैं इसको कम करने की जरूरत है लेकिन हम दो जो हैं हमको ऐसा सोचना पड़ेगा कि चीजें जो हैं वो स्टेबल रहे यहां पे। उन्होंने कहा जी लेकिन इसके अलावा हम क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स जो हैं उसके ऊपर हम दोनों कोऑपरेट करेंगे इन अ सेंस के इंटेलिजेंस शेयरिंग उसके ऊपर की जाएगी और ये जो यमन के अंदर और रेड सी के अंदर भी जो हंगामे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं इनको भी जो है बड़े गौर से देखना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम दोनों कंट्रीज जो हैं वी आर कमिटेड टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तुर्की है आपको पता है कि वो उसने भी ईरान तो करता ही करता है तुर्की ने भी बहुत ज्यादा कंडेम किया है इसराइल जो गाजा के अंदर कर लिया है लेकिन उसने अभी तक जो कमर्शियल टाइज हैं अपनी यानी कि जो ट्रेड है इसराइल के साथ वो खत्म नहीं की है जिसकी की वजह से तैयब अर्दोगान साहब के ऊपर बेतहाशा मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी लोगों ने एतराज किया है इंक्लूडिंग ईरान। ईरान ने भी बहुत एतराज किया था तुर्की पे कि अभी तक आपके ताल्लुकात क्योंकि जॉर्डन जो है उसने खत्म कर लिए हैं जॉर्डन के भी थे उसने खत्म तो उन्होंने कहा जी कि आपने अभी तक क्यों रखे हुए हैं लेकिन तैयब अर्दोगान साहब कहते हैं जी कि ऑलरेडी इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है मैं बिल्कुल ट्रेड खत्म नहीं कर सकता लेकिन जाहिर है कि मैं उनके अगेंस्ट जरूर बोलता रहूंगा। तो बड़ी सख्त बल्कि बयान दिए हैं कुछ तो तैयब अर्दोगान साहब ने तो आज ये इन दोनों के बीच में तो इसको अब फिर से वेस्ट बहुत अच्छे तरीके से नहीं देख रहा। आपको पता ही है कि तुर्की को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं यूरोपियंस उसकी जो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है और अब तो उसने जो ईरान के साथ मुलाकात की है तो आज काफी अगर आप ट्विटर देखें तो ट्विटर के ऊपर जो यूरोपियन कुछ हैं जो इंटरेस्ट के लोग वो उन्होंने आज काफी इस मुलाकात पे एतराज किया कि तुर्की जैसा एनलाइटन कंट्री ईरान के साथ दोस्ती क्यों बना रहा है यू नो तो ऐसे है। इंडिपेंडेंट की आज ये रिपोर्ट है जी और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट ये है कि कुछ राइट्स ग्रुप हैं यूएसए के अंदर जो कि बाइडन साहब के ऊपर अब केस करने लगे हैं फॉर जीनोसाइड इन गाजा। वो कहते हैं जी कि आप जो हैं आपके ऊपर जो है जबकि साउथ अफ्रीका ने इसराइल के ऊपर एलिगेशन लगाए जीनोसाइड और वॉर क्राइम्स में हेग के अंदर तो आप जो हैं इसराइल के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं आप कैसे एक जीनोसाइडल रिजीम के साथ खड़े हो सकते हैं। ये जो आज केस डाला गया है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ये फेडरल कोर्ट रूम इन ओकलैंड कैलिफोर्निया में डाला है इसमें ग्रुप्स ऑफ पैलेस्टीनियन सिविल राइट्स ग्रुप्स वो सब इनको सू कर रहे हैं कि आपने ये प्रिवेंट भी नहीं किया है, आप उनके साथ तो खड़े हो, प्रिवेंट ही कर लेते और आपने ये जो इंटरनेशनल और हमारा फेडरल लॉ है उस तक की कोई परवाह नहीं की है इस सिलसिले में। ये जो जज है इनको वो कहना चाहते हैं कि ये जितनी मिलिट्री और अदर एड जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो दी जा रही है इसराइल को, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाए कि फौरन इसको रोका जाए और इसको कंटिन्यू रखा जाए। और ये जो अब जो प्ली है ये कल से कोर्ट में इसकी हियरिंग शुरू हो सकती है, कल यानी कि फ्राइडे से शुरू हो सकती है इसकी जो है कोर्ट के रूम के अंदर। इससे पहले जब इनको पता चला स्टेट डिपार्टमेंट को और जो यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट है कि ये लोग प्लेंटिफ्स जो हैं ये एक केस कोर्ट के अंदर लेके जा रहे हैं, तो इनके जो अटॉर्नीज हैं उन्होंने आर्ग्यू किया है कि दिस इज गोइंग टू बी वैसे तो फर्स्ट टाइम कि किसी प्रेसिडेंट के ऊपर इस तरह के जेनोसाइड के एलिगेशंस लगाए जाएंगे और यूएस कोर्ट में उसको लेके जाया जाएगा, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने बिल्कुल कोर्ट को कहा है कि ये इनका केस सुनना ही नहीं है, इसको लेना ही कोर्ट में नहीं है और इसके ऊपर कोई हियरिंग करनी ही नहीं है। अब ये देखना पड़ेगा कल कि क्या कोर्ट इस केस को लेगी भी या नहीं लेगी। लॉ सूट जो है उसके अंदर नेम किया गया है डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन, और उनको कहा गया है जी कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूएस की जो अपनी खुद की ऑब्लिगेशंस हैं टू जीनोसाइड कन्वेंशन एंड जीनोसाइड कन्वेंशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट उसके खिलाफ ये चल रहे हैं, जिसको कि साइन किया था रोनल्ड रीगन में इन 1988। एंड हाउ आयरोनिक इज दिस, ये जिस वक्त रेजोल्यूशन उस वक्त कांग्रेस में आई थी और ये आई किस तरह से थी, ये उस वक्त के जो डेलावेयर के जो सेनेटर थे जो बाइडन साहब वो ये लेकर आए थे कि इसके ऊपर अमेरिका को साइन करना चाहिए कि दुनिया में कहीं पे भी जीनोसाइड होएगा तो हम उसको नहीं मानेंगे। तो वो राइट्स ग्रुप वाले कह रहे हैं कि अगर 1988 में जिस आदमी ने ये बात कही है आज वो इसराइल जो कि जीनोसाइड कर रहा है उसके पीछे कैसे खड़ा हुआ है। सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं उन्होंने एक केस फाइल किया था नवंबर के अंदर ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर उमर नज्जर एंड फिजिशियन एट नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो कि खान यूनुस गाजा में काम कर रहे थे, और इसके अलावा और बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी। तो ये अब जो है मुश्किल हो सकती है बाइडन साहब के लिए बिफोर इलेक्शन। है जी पैन, व्हाट इज दिस, यानी आप कह रहे हो गलत काम है नहीं करना, फिर खुद ही कर रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो माजिद भाई, आप क्यों नहीं बता रहे हो? काले चश्मे वाले तो आपके बड़े यार दोस्त हैं, आते हैं आप उनको क्यों नहीं बताते हैं? ठीक है जी। अच्छा जनाब, अल जज़ीरा की एक और स्टोरी है और ये भी बहुत ज्यादा जो है आई ओपनर है और ये भी अब फटे करेगी, अब पता नहीं कितने कर सकती है। बहरहाल ट्यूनीजियन प्रेसिडेंट जो है कैस साइद, उन्होंने जो है आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा वो क्रैक डाउन कर रहे हैं आजकल पॉलिटिकल डायसेंस के अगेंस्ट, जब से वो पावर में आए हैं 2021 में। ओवर 20 पॉलिटिशियंस और डजन्स ऑफ जो मीडिया के बंदे और दूसरे लोग जो हैं, यानी कि जितनी भी डायसेंटिंग वॉइसेज हैं उसको उनके खिलाफ क्रैक डाउन कर रहे हैं। इसमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो एक है जिसमें के नाम लिया गया है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस जमाने के हेनरी किसिंजर का, जिनकी कि अभी रिसेंटली डेथ हुई थी 100 ईयर्स की एज में। वो कहते हैं जी कि ये जो हैं इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी चलाई थी ट्यूनीजिया के अगेंस्ट। वैसे तो सईद साहब जो है वो बड़े पॉपुलर हैं, लोग उनकी बड़ी बात सुनते हैं क्योंकि वो भी यही कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में बड़ी करप्शन है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैं अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन कुछ लोगों ने कॉन्स्पिरेसीज की हैं, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज ट्यूनीजिया के खिलाफ की हैं, जिसकी वजह से ट्यूनीजिया का ये हाल है। अब हेनरी किसिंजर साहब कैसे पिक्चर में आते हैं? वो ऐसे आते हैं कि ऑन जनवरी 18 अहमद नजीब शेबी जो हैं इनके फॉर्मर मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ नेशनल सेल्वेशन फ्रंट, उनको एक्यूजेशन उनके ऊपर आए थे कि उन्होंने कुछ फंड्स लिए थे जो कि उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ शहीद को दिए थे जो कि इस वक्त जो है यूएस में रह रहे हैं, और ये सारे के सारा फंड जो है इनको हेनरी किसिंजर ने भेजा था अलेजली। यस, अलेजली इनको ये सारे फंड्स हेनरी किसिंजर ने भेजे थे और इन्होंने ये सारी की सारी मनी यूज करते हुए शैम इलेक्शंस मुल्क में कराए थे, करप्शन करवाई थी और स्टेट की जो रिट थी उसको अंडरमाइन किया था और सारा का सारा जो सिस्टम था ट्यूनीजिया का उसको सेबोटाज किया था। दिसंबर 2023 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें लोएस्ट टर्न ओवर था ट्यूनीजिया के अंदर, सिर्फ 11% ऑफ ट्यूनीजिया की जो 9 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर ہیں انہوں نے ووٹس ڈالے تھے. اور الیجلی یہ جو چارجز ہیں یہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اس طرح سے سامنے آئے ہیں کہ ایک پرزنر ہے اور اس نے کہا کہ کچھ لوگ تھے دو جو کہ اس کے سیل کے ساتھ دوسرے سیل میں تھے اور یہ پوری کی پوری کانسپریسی جو تھی ہیچ کر رہے تھے اور بول رہے تھے کہ اس طرح پرائم منسٹر اور اس کا جو سیکنڈ ان کمانڈ ہے وہ امریکہ سے پیسے لے رہا ہے اور وہ ایسے ایسے کرے گا. تو وہ جس وقت اس نے آ کے سامنے, بہت عرصہ تو وہ چپ رہا لیکن جب سامنے اس نے آ کے کہا کہ میں اب مرنے کے پاس ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ سروس کروں, تو اس نے ساری یہ جو کانسپریسی سامنے لائی ہے. تو اس کی وجہ سے اب یہ ٹونیزین پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں انہوں نے ہنری کسنجر صاحب کے کو الیجلی ایکیوز کیا ہے کہ اس نے فنڈز دیے ہمارے ملک میں کرپشن کرنے کے لیے اور ہمارے ملک میں الیکشنز کو چینج کرنے کے لیے. پائن کہڑی نویں گل ہے, ساڈے ملک پاکستان دیکھ لو کہ انہوں نے ڈرامہ کیتا ہے انکل سیم نے. ہاں جی انکل سیم کا تو کم ہی ہے ماجد پائن, انہوں نے نادانا نو سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو جناب یہ پھر سے اب کسنجر صاحب کے خلاف باتیں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے جی, اوکے. اچھا جناب, دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی راجا بادشاہ جی. آپ کو پتا ہی ہے دل اور دماغ سب کے راجا ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. تو اگر آپ کو بہت سارا اپنا پیسہ بچانا ہے, رائٹ کوریج لینی ہے, تو آپ ان کو فون کریں. آل اسٹیٹ ایجنٹس ایجنسی کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کا نمبر ہے 6472903773. اس کے علاوہ رائٹ کسٹم کیمٹری انک, یہ کہتے ہیں جی ہم بڑا ہی زبردست لیٹسٹ 3D جو کمپیوٹر ڈیزائن ہے اس سے آپ کا سارا کچن اور باتھ روم جو ہیں وہ ڈیزائن کرتے ہیں. اور اگر آپ کو اپنے کچن, باتھ روم, کاؤنٹر ٹاپس, کچھ بھی اور دوسری بھی کنسٹرکشن کرانی ہے تو آپ سیف صاحب کو فون کریں. ان کا نمبر ہے 6473008473. اینڈ آن ڈیریوز لارجسٹ پاکستانی حلال بفے, ان کے جناب دو ریسٹورینٹس ہیں. فیصل چٹا صاحب کو آپ فون کریں, ایک تو 4141 ڈکسی روڈ مسز ساگا میں ہیں اور ایک دوسرا جو ہے اوکول میں اب آیا ہے 2294 لیک شور روڈ ویسٹ کے اوپر. اور ان کو اگر آپ نے آرڈر ڈالنے کے لیے کال کرنا ہے تو ملائیں نمبر 9052262294 پے. ٹھیک ہے جی.
اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ پھر آپ کی خواہش پوری کر دیتا ہوں میں, اگر آپ کے دانتوں میں وہ خرابی ہے اور آپ ایسٹرن کے علاقے میں رہ رہے ہیں تو صاحب ڈاکٹر پدماجا رانی کے پاس چلے جائیں. ڈاکٹر پدماجا 3410 شیپرڈ ایونیو, شیپرڈ اینڈ وارڈن کے کارنر پر آپ کو ملیں گی. ڈاکٹر پدماجا 4162997466 ان کا فون نمبر ہے. کانوں میں کوئی خرابی ہے تو صاحب واپس میں ساگا لے آتا ہوں آپ کو. ہیئر میکس کے شیراز صاحب کہتے ہیں کہ آپ ساز و آواز کا حوالہ دیں گے تو آپ کو ہیئر ٹیسٹ ایبسولوٹلی فری کر دیا جائے گا. ہیئر میکس کے شیراز کا فون نمبر ہے 4167928792. جی
جی. اچھا جناب, آج اگر آپ ٹویٹر ٹرینڈ دیکھ رہے تھے تو ٹویٹر کے اوپر آج پاکستانی گورنمنٹ کی انتہائی کھلی اٹھائی جا رہی تھی, کیونکہ ظاہر ہے مطلب ہے 50 سال پورے پہلے جو تعلیم حاصل کی تھی اس کو اپ ڈیٹ تو کرنے کا وہاں پہ رواج نہیں ہے. وہ ایک جو انٹرنیشنل کنسورٹیم جو ہے, سوری انٹیلیجنس کنسورٹیم جو ہے, اس نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کے تمام جو سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں وہ انڈیا کے رو سے ملتے ہیں. اب آپ دیکھیں کتنا سیریس ایلیگیشن ہے یہ, وداؤٹ مطلب ہے فائنڈ آؤٹ کیے کہ سچ کیا ہے. یہ ایک ایلیگیشن لگا دیا جی آج صبح صبح اٹھ کے کہ پی ٹی آئی کے تمام جو سوشل میڈیا پورٹلز ہیں وہ جو ہیں رو کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں. اچھا جی, اب پاکستانی تو اس کے اوپر چپ ہو گئے لیکن آپ کو پتا ہے کہ انڈینز جو ہیں وہ تو بڑے تیز ہیں. ان کا جو وہ علاقہ ہے بنگلورو, اس میں تو بستے ہی سارے ٹیک گروز ہیں. انہوں نے پھر خوب سکول کیا پاکستانی گورنمنٹ کو. انہوں نے کہا جی جاہلو, تم لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ انٹرنیٹ چلتا کیسے ہے. ہوا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا سرور ہے, آئی پی ایڈریس, وہ دکھا رہا ہے کہ اٹ از لنکڈ ود انڈین ویب سائٹ, کیونکہ وہ جو ویب سائٹ ہے اس جیوگرافیکل لوکیشن میں آتی ہے ڈیٹا سٹوریج کے لیے جس میں کہ پاکستان ہے, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, یہ سارا ایریا ہے. تو انہوں نے کہا جو انڈین ٹیک گروز تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ بالکل جو ہے مس لیڈنگ انفارمیشن آپ دے رہے ہو, کیونکہ را کو اور بڑے بڑے کام ہیں کرنے کے لیے. یہ جو سائٹ ہے آن اے ڈبلیو ایس وچ از امیزون ویب سروسز, یہ صرف سرور کی لوکیشن جو ہے ریفلیکٹ کرتی ہے. آئی پی ایڈریس جو ہے وہ لوکل سروس سرور جو ریجن کے اندر ہوتا ہے وہ شو کرتا ہے. اینڈ ان دس کیس اٹ از انڈیا. ये जो है वो कहते हैं जी कि AWS सर्वर्स जो हैं सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है, और चूंकि पाकिस्तान इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू इंडिया तो इसलिए जो मुंबई का सर्वर है उससे ये जो है सारा कुछ रिलेटेड है। वैसे भी जो मुंबई से जो रिलेटेड सर्विस है जब आप लेते हैं सर्विसेज तो उनकी सर्विस बेइंतहा अच्छी है जो कि वर्ल्ड क्लास है और प्राइस बेइंतहा लो है। ये कहने के बाद कुछ लोगों ने कहा जी कि ये क्लाउन्स जो हैं इनको पता ही नहीं है कि इंटरनेट काम कैसे करता है। 24 घंटे जो हैं, दूसरे पाकिस्तानियों ने भी कुछ इसमें कहा कि जी हर वक्त तो तुम लोग लेफ्ट राइट एंड सेंटर ब्लॉक करते रहते हो वेबसाइट्स को, तो हम जो है AWS डेटा के साथ ही अपने आप को कनेक्ट करके अपनी बात लोगों पे पहुंचा सकते हैं। इंडियंस ने कहा कि यू ऑलवेज क्राई अबाउट रॉ एडमिट दैट इंडियाज ग्लोबल क्लाउड प्रोवाइडिंग सर्विसेज आर द बेस्ट, डू यू हैव एनी, इफ नॉट देन शट अप। तो काफी आज लोग जो थे वो बढ़के रहे हैं जी। तो ट्विटर पे आज ये टॉप ट्रेंड था। पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं जी साइरस सज्जाद काजी साहब, उन्होंने आज हिंदुस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगाए और फिर जो इंडिया है उसने भी जवाब में जो है बेइंतहा एलिगेशंस पाकिस्तान के ऊपर लगाए और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो कर रहा है उसके लिए उसको सहना पड़ेगा। पाकिस्तान के साइरस सज्जाद काजी साहब ने कहा कि इंडिया ने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो हैं वो की हैं इनसाइड पाकिस्तान ऑफ टू पाकिस्तानी सिटीजन्स, और ये किलिंग्स जो है किलिंग्स फॉर हायर केस का जो है हाईएस्ट पॉइंट है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये सारा कुछ एग्जीक्यूट किया गया था। ये जो दो लोग हैं इनके नाम है शाहिद लतीफ एंड मोहम्मद रियाज, रियाज को मारा गया था जब ये नमाज पढ़ रहा था रावला कोर्ट में जम्मू एंड कश्मीर में, आजाद जम्मू एंड कश्मीर में सितंबर में, और लतीफ को भी एक सियालकोट की मस्जिद के बाहर मारा गया। काजी साहब का कहना है कि जी ये जो किलिंग्स हैं इनका स्टाइल बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कैनेडा और यूएसए में इंडियन एजेंट्स ने लोगों को अलेजली मारा है। इंडिया ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्शन शो करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद की ये जो लेटेस्ट अटेम्प्ट है टू पेडल फॉल्स मिलिशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा ये बिल्कुल गलत है। रणधीर जसवाल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने कहा जी सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है इज एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, आप गलत काम करते हो, जो आप व्हाट यू रीप सो शैल यू सो, और पाकिस्तान जो है उसके पास जो है सिर्फ वो दूसरों को बदनाम कर सकते हैं। काजी साहब कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान के पास क्रेडिबल एविडेंस है कि इसके तमाम के तमाम लिंक्स जो हैं इंडियन एजेंट से जाके मिलते हैं। इंडिया कहता है कि ये दो लोग जो थे ये टेररिस्ट थे, एक का ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से था, दूसरे का ताल्लुक लश्कर ए तैयबा सियालकोट से था, तो इसलिए इनको जो है उनके अपने ही लोगों ने मारा होगा। पाकिस्तान को अपनी खुद की सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी, इंडिया को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है पायन जी, ठीक है। अच्छा जनाब, आज नादरा ने एक व्हाट्सएप चैनल जो है वो लॉन्च किया है और उन्होंने कहा जी कि ये बहुत ही अप टू डेट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है। ये एक इंतहाई इनोवेटिव इनिशिएटिव है जो कि नादरा ने लिया है, जिसका के मकसद ये है कि रियल टाइम मैसेजेस जो है वो विदाउट एनी मिस कम्युनिकेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए और मिस इन्फॉर्मेशन को प्रिवेंट किया जाए, आपको अपडेट किया जाए और गाइडेंस दी जाए। जिन लोगों को इनकी वेबसाइट पर जाना है नादरा की, वहां पर जब आप जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप चैनल का एक टैब नजर आएगा, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सारी जो है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी जो भी आप देखना चाहेंगे। मरियम नवाज साहिबा और बीबी जरदारी के बीच में भी जनाब काफी ठन गई है। मरियम नवाज साहिबा ने कहा जी कि कुछ लोग जो हैं वो झूठे वादे कर रहे हैं। अगर हम आपको बता दें कि थोड़ा सा भी पहले जस्ट अबाउट फ्यू मंथ्स बैक पीडीएम में इनके बीच में बड़ा प्यार चल रहा था दोनों के बीच में, है ना जी। भारत जी, उन्होंने इन अपेरेंट अटैक ऑन बीबी जरदारी, उन्होंने कहा जी कुछ लोग बहुत झूठे जो हैं वो वादे कर रहे हैं। आज ये एड्रेस कर रही थी लाहौर एनए 119 कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहां से कि ये कंटेस्ट करने का सोच रही हैं। उन्होंने कहा जी कि पीएमएलएन जो है वो एक वाहिद पार्टी है जो आपके सारे मसले जो है हल कर सकती है, लेकिन कुछ लोग जो है दिन रात पीएमएलएन के खिलाफ जो है वो एलिगेशंस लगा रहे हैं। कुछ उन लोगों ने, उन पार्टियों ने पंजाब में 15 साल जो है वो हुकूमत की थी, लेकिन 15 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी नहीं है उनके पास दिखाने के लिए, तो कैसे वो बात कर सकते हैं। बीबी जरदारी ने असल में एक दिन पहले कहा था कि ये अभी तक पीएमएलएन जो है वो अपना मैनिफेस्टो लेकर नहीं आई। मरियम नवाज साहिबा ने उस पर बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ साहब जल्दी ही अपना मैनिफेस्टो लेकर आएंगे। इसके अलावा बीबी जरदारी जो है उन्होंने अपने सपोर्टर्स को कहा कि आप पीपीपी वालों को सपोर्ट करें अगर आप इस मुल्क में डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी देखना चाहते हैं, और शेर जो है वो तो सिर्फ लोगों का खून चूस रहा है और इसीलिए शेर जो है आजकल नजर नहीं आ रहा है क्योंकि उसको कोई जो है निशाना मिल नहीं रहा है। तो बजाय इसके कि आप शेर को जो है वो जो अपने आप को किंग मानता है उसके ऊपर ठप्पा लगाएं, आप हमारे पीपीपी के उसके ऊपर स्टैंप करें, एरो पे स्टैंप करें, ठीक है पन, ठीक है। एंड जनाब, दो अनआइडेंटिफाइड लोगों ने ईसीपी का जो ऑफिस है तुर्बत में उसके ऊपर अटैक किया और अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर एक पुलिसमैन की जो है वो डेथ हुई। इन्होंने ईसीपी के ऑफिस में घुसने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, उसमें जो है इसने पुलिस वाले ने बड़ी बहादुरी से जो है इनकी मिलिटेंट्स का जो प्लॉट था कुछ गलत काम करने का उसको फॉयल किया, उसको मारा, लेकिन इसमें उन्होंने एक हैंड ग्रेनेड अंदर फेंका जो कि फटा, जिसमें कि पुलिस वाले की डेथ हुई, लेकिन और कोई इंजरीज जो है वो सामने नहीं आई है। ये उस वक्त हुआ है जब बलोच टेक के जो केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर हैं मीर अली मर्दान खान डोंकी, वो ये तुर्बत का सारा दौरा अभी एक दिन पहले ही करके गए थे फॉर अपकमिंग इलेक्शंस, उसके फौरन ही नेक्स्ट डे जी नाव ये हुआ है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि मैं इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले रहा हूं, इलेक्शंस को मीनिंगफुल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी ये है, लेकिन ये मीनिंगफुल उसी वक्त हो सकता है जब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं या लीडर्स जो हैं वो अपनी ड्यूटीज को पूरा करें। मुल्क के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कभी सॉल्व नहीं होंगे जिस वक्त तक इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं होंगे, और मैं इसलिए नहीं हिस्सा ले रहा क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल यूजलेस किस्म के इलेक्शंस होंगे। और अगर इन्होंने पॉलिटिशियंस ने इस इलेक्शंस को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की तो याद रखें कि इस मुल्क में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। और इन्होंने कहा कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, इनकी पूरी जिम्मेदारी है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ को चाहिए कि वो मेक श्योर करें कि यहां पे इलेक्शंस जो है फेयर और फ्री तरीके से हुएं। और जो है मैंने बहुत अरसा पहले ही इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज छोड़ दी थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ठीक डायरेक्शन में नहीं चल रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पॉलिटिकल पार्टी छोड़ी है या कि मैंने मैं अब कंटेस्ट नहीं कर रहा तो मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी है, पॉलिटिक्स मैंने नहीं छोड़ी है। आज ये मीडिया के साथ रावलपिंडी में बात कर रहे थे, यानी कि ये इंतजार कर रहे हैं इनको राइट ऑफर आएगी तो फिर ये उनके साथ चलेंगे। हैं पायन, चलो कोई गल नहीं, इंशाल्लाह आ जाएगी थोड़े को, फिक्र ना करो। हैं अल्लाह ने इस मुल्क के विच लोगों नूं बड़ा दिता है जी जनाब, तुसी खुद सोचो यूनाइटेड इंडिया विच रह रहे होंदे किथे होंदा है बीबी जरदारी, किथे होंदा जरदारी, किथे होंदे शरीफ साहब, किथे होंदे है सारे, हैं जी नजर ही नहीं सन आने हैं बंदे ये तो थोड़ी जनाब लाटरी लग गई है, पाकिस्तान बने हैं लाटरी लगी है जी, आप शुक्र अदा। अच्छा जनाब, राहुल गांधी साहब जो हैं वो अब वाकई बड़े लीडर बन के सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं ये जो हैं शर्मा साहब, ये मुझे डरा बिल्कुल नहीं सकते हैं, और ये हिमांता बिस्वास शर्मा साहब, और ना ही ये जो कुछ कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं हो रहा कि मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे समझ में आ रही है कि ये सारा कुछ जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब उनकी डायरेक्शन पे कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा हमें ही हो रहा है, हम इस तरह की पब्लिसिटी नहीं कर सकते थे, ये इनके जो एक्शंस हैं उसकी वजह से हमें बेतहाशा पब्लिसिटी मिल रही है क्योंकि लोग देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई क्यों राहुल गांधी को टेम्पल में, कॉलेज में और यात्रा से करने से रोका जा रहा है। तो हम तो इस तरह की पब्लिसिटी कर नहीं सकते थे, इनकी ये जो इंटिमिडेशन टेक्टिक्स हैं उसकी वजह से हम न्यूज में ज्यादा हैं और हमको ज्यादा पब्लिसिटी मिल रही है। इसके अलावा कांग्रेस के कुछ ऑफिशियल से पूछा गया कि जो दीदी हैं ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल की, उन्होंने तो भी बयान दिया है हालांकि वो आपकी इंडिया अलायंस का हिस्सा है कि वो अकेले लड़ेंगी, तो इसके ऊपर कांग्रेस के एमपी गौरव गोगोई ने कहा कि नहीं नहीं ये यात्रा जो है सही डायरेक्शन में जा रही है, तमाम रीजनल जो लीडर्स हैं वो हमारे साथ हैं और दीदी को भी हम मनाएंगे, वो हमारी जो इंडिया अलायंस की मेन पिलर है, और बीजेपी अननेसेसरली जो है वो गलत किस्म का परसेप्शन हमारे बीच में दरार डालने के लिए क्रिएट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सारे स्ट्रांग खड़े हुए हैं, वी आर स्टैंडिंग ऑन अ वेरी स्ट्रांग विकेट एंड वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। वो देखो जी इन्होंने भी इमरान खान की जबान बोलनी शुरू कर देती है, पहन देखे तब्दीली आ गई है, तब्दीली आ गई है। और जनाब अब खुल गए हैं कट्टे हिन्दुस्तान में क्योंकि राम मंदिर बन गया है, और आपको हमने बताया था कल भी और परसों भी कि बहुत सारे चर्चेस जो हैं उनके जो हैं जो क्रॉसेस हैं उनके ऊपर जाके भगवा झंडे लगाए गए हैं और वहां पे जय श्री राम लिखा गया है। हुण स्यापे होर खुल गए मस्जिदां दे, अब जो दूसरा स्यापा खुला है वो ज्ञान वापी मस्जिद जो है जनाब उस सिलसिले में खुल गया है। आज एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने जो के जो हिंदुत्व जो ग्रुप है उसकी साइड कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी ज्ञान वापी मस्जिद जो है अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये भी मंदिर पत्थर ढाके उसकी जमीन पे बनाया गया है। वो कहते हैं जी कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन जब देखी गई थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने की थी, तो इसके पिलर्स और प्लास्टर जो है और जो उन्होंने सारे ये स्ट्रक्चर स्टडी किए थे, तो उसमें पता चल रहा था कि ये जो इन्होंने कुछ चीजें हालांकि तोड़ के सेहन को बड़ा करने के लिए भी जो काम किए हैं, उसके अंदर तमाम की तमाम मॉडिफिकेशंस और ये जो फूल बूटे और परिंदे और जानवर और फ्लावर्स हमने बनाए, इन्होंने बनाए, वो इन्होंने जो मेन मंदिर के जो स्टोन्स थे उनको हटा के बनाया, और जब वो हटाया तो उसके ऊपर सारे का सारा प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल के निशान मिले थे। इन्होंने जो सेंट्रल गेट जो था उसको जब हटाया तो वहां पे भी सारे निशान मिले हिंदू टेम्पल के, और ये जो इन्होंने अरबिक पर्शियन इंस्क्रिप्शन भी जो वॉल्स पे लिखी हुई हैं, 20th ईयर ऑफ जो औरंगजेब का रूल जो था उसके अंदर ये इन्होंने लिखी थी, जिसका के मतलब है कि ये इन्होंने 17th सेंचुरी में मस्जिद बनाई है, जबकि मंदिर यहां पे बहुत ही पहले से खड़ा हुआ था। लिहाजा कोर्ट जो है इसके ऊपर भी फैसला दे और ये ज्ञान वापी मस्जिद को भी गिराया जाए ताकि इसके ऊपर फिर से मंदिर बनाया जा सके। खुशून भाईजन, इसके अलावा जनाब अब मैं आपको तीसरा बता देती हूं, मुद्दा आएगा सुनहरी मस्जिद का। सुनहरी मस्जिद आएगी, और कुछ दिन पहले हमने आपको बता ही दिया है कि दिल्ली के अंदर वो जो कह रहे हैं जी ट्रैफिक है बेतहाशा एक मस्जिद के गिर्द, वो उस मस्जिद को हटाना पड़ेगा कि जी वो फ्लो ठीक किया जाए, तो हूं जनाब मस्जिदें गिरनगी है, ठीक है ऐसे। और जनाब विकास बहल की जो फिल्म आ रही है अजय देवगन, ज्योतना और ज्योतिका और माधवन के साथ शैतान, जिसका मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, उसका आज एक 1 मिनट से ज्यादा का ट्रेलर जो है वो सामने आया है, और जैसे लोग समझ रहे थे कि जी ये एक जाहिर है कि ब्लैक मैजिक भी होगी, बिल्कुल माधवन जो है शैतान का रोल प्ले कर रहे हैं इसके अंदर। वो कहते हैं जी मैं डार्कनेस हूं, टेम्पटेशन हूं, लोग कहते हैं कि जी वो कोई गलत बात सुनते नहीं है, वो बह रहे हैं, लेकिन मेरी तो हर बात वो सुन रहे हैं, और मैं जो है रूल करता हूं 9 सर्कल्स ऑफ हेल्थ में, और मैं किसी को स्पेयर नहीं करता, आप गेम खेलना चाहते हैं तो आओ फिर गेम खेलें। तो अब लोग जो है बड़ा एक्साइटेड हो गए हैं जी इसका ये देख के। कंगना रनावत साहबा जो है जी वो राम मंदिर के जो ओपनिंग थी उसके ऊपर देखी गई, इजी माई ट्रिप के फाउंडर मिलियनेयर बल्कि बिलियनेयर निषाद पिट्टी के साथ, जिसके बाद लोगों ने कहा कि शायद ये रोमांटिकली इनके साथ इन्वॉल्व है। इन्होंने कहा जी कि नहीं, मैं मीडिया को बड़ा हम्बली रिक्वेस्ट करती हूं कि जो पिट्टी साहब हैं ये मैरिड हैं और मैं जो है रोमांटिकली किसी और के साथ इन्वॉल्व हूं, आई एम डेटिंग समबडी एल्स, तो आप जरा टाइम का वेट करो और हमको एम्बेरस मत करो। अच्छी बात नहीं है कि एक जवान औरत को आप बार बार किसी और के साथ उसका नाम जोड़ते हो, और जो है जस्ट बिकॉज मैं किसी के साथ तस्वीर खींच लेती हूं मेरा आप उसके साथ स्कैंडल बनाते हो, इट इज नॉट राइट। खुश हो मजे भाई। अच्छा जी, एलेक बाल्डविन साहब जो है जी फाइनली उन्होंने अपना जो लीगल डिफेंस है उसको अब लॉन्च किया है, और ये जो आपको पता ही है कि रस्ट की जब शूटिंग हो रही थी इनकी मूवी की, तो इसमें एक बंदूक चल गई थी और उसमें इनके सिनेमाटोग्राफर जो थी हिलेन हचिन्स वो उनकी डेथ हो गई थी, और जो डायरेक्टर थे जोएल सूजा वो वूंडेड हो गए थे, तो इनके ऊपर इल्जाम आया था कि भाई इन्होंने जानबूझ के बंदूक चलाई है, जबकि इन्होंने कहा कि मैंने वो आर्म डिस्चार्ज नहीं किया था, मैं तो सिर्फ उसका जो है मैंने ट्रिगर पुल नहीं किया था सॉरी, और मैं तो सिर्फ उसका हैमर जो था उसको साफ कर रहा था, देख रहा था जब ये गोली चली। तो अब जो है ये अपीयर होंगे न्यू मैक्सिको के जज के सामने जहां पे कि ये इंसिडेंट हुआ था, और ये जो है अब सारी की सारी चीज जो है शुरू होगी 1 फरवरी से, तो अब देखेंगे जी क्या होता है। मिशेल मार्श जो है जी वो अब कैप्टन करेंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम को फॉर T20 सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। स्किपर पैट कमिंग्स जो है उनको रेस्ट किया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आज कहा जी ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 T20s बिटवीन February 9-13 में एज पार्ट ऑफ द प्रेपरेशन फॉर T20 वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन कैरिबियन एंड US इन जून। उसके लिए हम नए नए जो लोग हैं उनको यानी कि प्लेयर्स को हम कर रहे हैं ट्राई कर रहे हैं। कमिंग्स और स्टार्क जो है उनको कहा गया है कि तुम न्यूजीलैंड का जो टूर आने वाला है February 21 का उसके लिए तुम प्रेपरेशन करो, इसको लीड करेगा मिशेल मार्श। और जनाब फॉर्मर चैंपियंस जो हैं फुटबॉल के अल्जीरिया वो अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के जो फुटबॉल मैचेस चल रहे हैं दे हैव क्रैश्ड आउट इन ग्रुप स्टेज अगेंस्ट मोरिटानिया. कैमरून जो है वो भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है बाय डिफीटिंग गैम्बिया. और इससे पहले इन्होंने जो फर्स्ट टू मैचेस थे ग्रुप डी के वो ड्रॉ किए थे एंगोला और बुर्किना फैसो के साथ. और ये जो था अब इनके लिए ये जीतना जरूरी था. और बड़ी जबरदस्त किस्म की गेम दिखाई मोरिटानिया से. कोई सोच नहीं सकता था कि ये चैंपियंस अल्जीरिया को हराएंगे. उन्होंने फर्स्ट टू मैचेस क्योंकि वो वैसे भी हारे थे इन आइवरी कोस्ट और अब इनके पास एक आखिरी चांस था तो ये इसके लिए इन्होंने किया. और इनका जो बड़ी इनकी खुशकिस्मती है कि जो 1-0 से आज जीते हैं अल्जीरिया से, 37th मिनट में गोल किया इनके कैप्टन मोहम्मद दल्ला यली ने, तो उसकी वजह से ये जो है जीते हैं. पुलिस जो है इन लंदन ऑन्टेरियो अभी तक कंफर्म नहीं कर रही है कि जो कनाडा की 2018 वर्ल्ड जूनियर हॉकी टीम के जो 5 मेंबर्स हैं उनके खिलाफ जो है अलेज सेक्सुअल असॉल्ट के जो केस है उसमें चार्जेस लगाए जा रहे हैं कि नहीं लगाए जा रहे. ग्लोब एंड मेल की एक खबर आई है उसमें उन्होंने 2 अननेम्ड सोर्सेज का नाम लेते हुए कहा है कि ये पेंडिंग है चार्जेस इन 5 मेंबर्स के अगेंस्ट. और इन्होंने एक औरत के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया था इन अ होटल रूम आफ्टर हॉकी कनाडा गाला इन जून 2018, जहां पे के प्लेयर्स को ऑनर किया जा रहा था फॉर विनिंग फॉर दैट ईयर्स जूनियर टूर्नामेंट. तो वो कहते हैं जी कि उनमें से बहुत सारे जो अब लड़के हैं वो NHL के अंदर भी जा रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ कह नहीं रही है. पुलिस ने आज कहा है जी लंदन में कि जहां हम मीडिया को हम कांटेक्ट करेंगे जब हमारे पास कुछ शेयर करने के लिए होएगा इस इन्वेस्टिगेशन में. एंड जनाब एब्सोल्यूटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट डिफेंडिंग चैंपियन अरियाना सैबालेंका, जिन्होंने के अपना बदला ले लिया US ओपन फाइनल का लॉस फ्रॉम कोको गॉफ. और अब इनका मुकाबला होएगा जेंग क्वीन वेंग के साथ एट ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑन सैटरडे. सैबालेंका जो थी उन्होंने जीता 7-6-2, 6-4 इन सेमीफाइनल्स. एंड शी एक्चुअली हैज एक्सटेंडेड हर विनिंग स्ट्रीक टू 13 मैचेस एट मेलबर्न पार्क. और 12th सीडेड जेंग जो है उसने डिफीट किया था यूक्रेनियन क्वालिफायर डेना येस्टर मेस्का को 6-4, 6-4 इन सेकेंड सेमीफाइनल इन रॉड लेवल अरीना. जेंग जो है शी लॉस्ट इन US क्वार्टर फाइनल्स टू सैबालेंका लास्ट ईयर एंड शी इज इन फाइनल में अब जो है ये आई हैं बड़े अरसे के बाद आफ्टर चाइनीज स्टार ली ने, जिन्होंने के ऑस्ट्रेलियन टाइटल बड़ा अरसा पहले कोई 10 साल पहले जो है वो जीता था. तो ये थी जनाब हमारी आज की खबरें सारी.
हो गई जी.
हाँ जी हाँ जी. अच्छा और सुनी है ना जो
नहीं, श्योर है.
हाँ जी हाँ जी. मेरा ख्याल है कार जाइए सारे
सही ठीक ठाक है ना.
आहो आहो बस बहुत खबरें सुना रही हैं दोनों.
प्लीज आप ये थी आज की खबरें.
थैंक यू
सो मच. थैंक यू सो मच शफी जी. एंड बखिया की खबरें इंशाल्लाह ताला कल और आज. सब अब फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ प्रोग्राम इन प्रोग्रेस विद जीशान अहमद. रंगारंग प्रोग्राम है, सुनना ना भूलिए. ऐसे ही स्टे ट्यून एंड बखिया की बातें कल इंशाल्लाह. उस वक्त के लिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.
गोरिए किन्नी गोरी है तू जमीन पे चांद की जोड़ी है बुरी है बड़ी बुरी है दुनिया की नियत छोड़िए नजर ना लग जाए जानू और दिए घबराए सानू नजर ना लग जाए जानू और दिए घबराए सानू
सुनने को तैयार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार नचदा मैं फिरा हंजुआ तो बचदा मैं फिरा ओ जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी नए के आ जाने से जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे क्यों परेशान है मेरे जाने से टूटा है तो जुड़ा है क्यों मेरी तरफ तू मुड़ा है क्यों हक नहीं तू ये कहे कि यार अब हम ना रहे एक तेरी यारी का ही सातों जन्म हकदार हूँ मैं तेरा यार हूँ मैं तेरा यार हूँ मैं तेरा यार हूँ मैं तेरा यार हूँ
रक्षा के गाने के जैसे कोई हो, देख के चंदा भी गया तुझे छो, बात मेरी सुन ले भी बिल्कुल चुप, ले मेरी जान हथेली एक लोक, रक्षा के गाने के जैसे कोई हो, देख के चंदा भी गया तुझे छो, बात मेरी सुन ले भी बिल्कुल चुप।
मैं बावली हूँ तेरी, तू जान है ना मेरी, बस प्यार ही है मांगा, किस बात की है देरी।
यारा चल तू, ये रात कभी ना आवे आवे आवे